ओम शांति। सर्व खजानों को सफल कर सफलता मूर्त बने। संगम युग में खजानों के सागर बाबा हमें वर्षे के रूप में अथाह खजाने देते हैं और उन खजानों को जितना हम प्रयोग में लाते हैं, जितना हम यूज करते हैं स्वयं के लिए, सेवा के लिए, औरों के लिए, उतने ये खजाने वृद्धि को पाते रहते हैं। इसलिए जो भी हमें खजाने बाबा से मिलते रहे हैं, उन खजानों को बड़े दिल से हमें प्रयोग में लाते रहना है और स्वयं को खजानों से माला माल करते रहना है। तो मैं आपके सामने 10 प्रकार के खजाने रखना चाहूंगा। खजाने तो और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य 10 प्रकार के खजाने सामने रखना चाहूंगा। पहला खजाना श्वासों का खजाना। जब से आत्मा इस देह के पिंड में प्रवेश होती है और जब इसको छोड़ती हैं, सारे जीवन काल में हमें श्वासों का खजाना मिलता है। तो जितने श्वासों का खजाना हमें मिलता है उनको हमें सफल करते जाना है। कबीर दास जी का बहुत सुंदर एक दोहा है, श्वास श्वास पर राम रट, श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास मत खोय, ना मालूम या श्वास को आवत हो या न हो। हमें किसी को भी पता नहीं है कौन सा श्वास हमारा अंतिम श्वास होगा। इसलिए जो श्वासों का खजाना हमें मिला है उसको सफल करते जाना है। बाबा की याद में या बाबा की सेवा में। तो जितना जितना ये श्वासों का खजाना हम सफल करते जाते हैं उतना उतना ये खजाना और भी बढ़ता है। बाबा मुरली में स्पष्ट कहते हैं, योग से आपकी आयु बढ़ती है। आयु बढ़ना अर्थात श्वासों का खजाना बढ़ना। दूसरा खजाना है समय का खजाना। समय का खजाना ये सबसे श्रेष्ठ खजाना है। यह अन्य खजानों को पाने का एक आधार है। इसलिए समय के खजाने को सफल करना ये सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम स्वचिंतन में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो समय का खजाना सफल होता जाता है। लेकिन कभी कभी व्यर्थ बातों में, परचिंतन में अशुभ भावनाओं में, ये समय का वैल्यूएबल खजाना हम बर्बाद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं, ये मूल्यवान समय के खजाने को मूल्य नहीं देते हैं, साधारण रीति से गवाते हैं। लेकिन जो महीन बुद्धि वाले होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, वो समय के खजाने को पल पल को सफल करते रहते हैं और अपने को मालामाल करते रहते हैं। तीसरा खजाना है संकल्पों का खजाना। संकल्पों का खजाना ये शक्तिशाली खजाना है। ये श्रेष्ठ खजाना है। तो जितना हम बाबा को याद करते हैं, सकारात्मक चिंतन करते हैं, परमात्म चिंतन करते हैं, आत्म चिंतन करते हैं, उतना ये संकल्पों का खजाना सफल होता जाता है। और जब हम पर चिंतन करते हैं, नकारात्मक चिंतन करते हैं, पर दोष दर्शन करते हैं, तो संकल्पों का खजाना गवाते रहते हैं। दुनिया में कहते हैं जो अच्छा खाते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। तो जब हम आत्मा को शक्तिशाली संकल्पों का भोजन खिलाते हैं तो आत्मा भी शक्तिशाली बनती जाती है। इसलिए हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं, सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं रूपी पत्तों को शक्तिशाली भोजन खिलाना ये हमारी ड्यूटी है। शक्तिशाली और शुद्ध संकल्पों के द्वारा उन आत्माओं को हमें शुद्ध और शक्तिशाली भोजन खिलाना है, खुराक खिलानी है। अगर हमारे संकल्प अशुद्ध होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो हम उनको शक्तिशाली खुराक नहीं खिलाते हैं। चौथा खजाना है ज्ञान का खजाना। ज्ञान का खजाना ज्ञान धन के रूप में गाया जाता है। ज्ञान का सागर बाबा हमें अमूल्य ज्ञान रत्नों का खजाना बांटते रहते हैं। हर रोज ज्ञान स्नान कराते रहते हैं। तो मुरली पढ़ना अर्थात ज्ञान को समझना और ज्ञान को धारण करना, पढ़ना, समझना और धारण करना, ये तीन बातें हैं। मम्मा ने इन तीनों बातों को अपनाकर बहुत नंबर आगे लिया। तो जो इस दुनिया में वीआईपीज होते हैं वो सारे दिन भर में दो तीन बार स्नान करते हैं। तो हम भी बाबा के बच्चे बड़े वीआईपी हैं, कोई भी साधारण नहीं है। तो हमें भी कम से कम दो तीन बार ज्ञान स्नान करना है। उस ज्ञान स्नान से आत्मा हमेशा फ्रेश अनुभव करने लगती है। तो मम्मा के बारे में गाया जाता है, मम्मा बाबा के पास जब आई थी खाली हाथ आई थी, लेकिन भक्ति मार्ग में गाया जाता है कृष्ण जब बांसुरी इधर उधर रखते था तो राधा उसको चुरा लेती थी, छिपा लेती थी और उसको बजाती थी। ये क्यों गायन है? शिव बाबा जो ब्रह्मा बाबा के अर्थात कृष्ण की आत्मा के द्वारा मुरली बजाते हैं, उस मुरली को राधा अर्थात मम्मा मनन चिंतन करती थी और ज्ञान रत्नों से स्वयं साहूकार बनती थी और बच्चों को साहूकार बनाती रही। बहुत बड़े दिल से ज्ञान रत्नों को बांटती रही। परिणाम स्वरूप वो सारे संसार को दान बांटने वाली धन लक्ष्मी बन गई। देखो भगवान की पॉलिसी कैसी है। जो यज्ञ में खाली हाथ आई थी वो सारे संसार को धन बांटने वाली धन लक्ष्मी बन गई। तो हमें भी ये मौका है ज्ञान सागर से ज्ञान का खजाना लेते रहें और बड़े दिल से दरिया दिल से ज्ञान रतन बांटते रहें। कई सोचते हैं मेरे पास जितना ज्ञान का खजाना है, डायरिया है, स्टॉक है, अगर मैं सब बांट दूं तो मैं तो खाली हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो ऊपर वाला देखता है ज्ञान का सागर बाबा, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बच्ची, मैं जो ज्ञान देता हूं उन ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करके अनेकों को धारण कराती हैं, इसलिए वो ज्ञान का सागर नए नए ज्ञान रत्न उनको देता रहता है और उनको और भी ज्ञान रत्नों से भरपूर करता रहता है। इसलिए हमें बड़े दिल से ज्ञान रत्न बांटते रहना है। पांचवा खजाना दिव्य बुद्धि का खजाना। भक्ति मार्ग में हम भगवान से यही मांगते थे कि मुझे दिव्य बुद्धि प्रदान करो। तो बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि का खजाना दिया है, तो उस दिव्य बुद्धि को जितना हम ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं उतनी बुद्धि की दिव्यता, भव्यता, विशालता स्वतः ही बढ़ती जाती हैं। दुनिया में बुद्धिमान एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धि का प्रयोग लौकिक कार्य में ही करते हैं। लेकिन हमें बाबा ने गोल्डन चांस दिया है अपनी दिव्य बुद्धि को ईश्वरीय सेवा में लगाने के लिए, प्लानिंग बुद्धि बनाने के लिए। हमने देखा प्रकाशमणि दादी जी हमेशा विश्व के बारे में सोचती थी, प्लानिंग भी करती थी, उसके कारण दादी जी विश्व की लीडर बन गई थी। तो ऐसे ही हमें अपनी दिव्य बुद्धि को ईश्वरीय सेवा में लगाना है। तो ये दिव्य बुद्धि का खजाना दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और जिन आत्माओं के पास दिव्य बुद्धि का खजाना बहुत होता है वो इस ईश्वरीय रेस में सदा आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। वो कभी भी माया में नहीं फंसते हैं। ये बुद्धिमानी उनके पास होती है। कभी भी दुश्मन से वो धोखा नहीं खाते हैं। छठवां खजाना खुशी का खजाना। बाबा कहते हैं आप सभी हीरो एक्टर इस बेहद के ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं, मैं आपको विशेष ड्यूटी दे रहा हूं। कौन सी ड्यूटी? सदा खुश रहना है और खुशियों का खजाना बांटते रहना है। सदा खुशनुमा जीवन अनुभव करना है और दिल खुश टोली खाते रहना है और सबको खिलाते रहना है। क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं, गमी जैसा रोग नहीं, ये कहावत हम सुनते आए। खुशी आत्मा का सबसे शक्तिशाली भोजन है, खुराक है। तो लोग हमें जब देखते हैं तो हंसी हंसी में कहते हैं आप इतने खुश कैसे रहते हो, सदा खुश रहते हो और मोटे ताजे होते जा रहे हो, क्या खाते हो आप, कौन से चक्के का आटा खाते हो। हम जवाब उनको देते हैं उसी चक्के का आटा खाते हैं जिस चक्के का आप खाते हैं, लेकिन हम सभी चक्रों से फ्री होते हैं और केवल एक ही सुदर्शन चक्र घुमाते रहते हैं और सबा खुशी में झूमते रहते हैं और खुशियां बांटते रहते। तालियां तो बजाओ भाई। तो हमारे चेहरे पर हमेशा खुशी की झलक सदा छाई हुई रहे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक स्लोगन कभी भी नहीं बोलना, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर हो, उस पर अगर मुस्कुराहट नहीं होती तो उसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। तो मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। तो हमेशा चेहरा हमारा मुस्कुराता हो और सबको हम खुशियां बांटते रहें, क्योंकि अभी खुशियों का अकाल है। तो जितना खुशी बांटते रहेंगे उतना ये खुशी का खजाना बढ़ता जाएगा और जीवन हमारा खुशियों से भरपूर होता जाएगा। छठवां खजाना है, सातवां खजाना है, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना। भक्ति मार्ग में गाते थे कर्मों की खेती, तो कहावत है जैसे कर्म करे मन मेरे वैसे ही बैल बनेंगे तेरे। हमारे वर्तमान समय जैसे कर्म होते हैं उसके आधार पर ही हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता है, क्योंकि हमारे वर्तमान समय के श्रेष्ठ कर्म हमारे साथ श्रेष्ठ संस्कार के रूप में चलते रहते हैं। इसलिए हमें साधारण कर्म नहीं करना है, हम सभी महान आत्माएं हैं, हमें श्रेष्ठ कर्म करना है और अनेकों को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते रहना है। लेकिन उसके लिए एक सुंदर युक्ति को हमें अपनाना है। कौन सी युक्ति? हमेशा लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाना है और चेक करना है क्या मेरे सूक्ष्म और स्थूल कर्म इनके जैसे महान हैं या नहीं। अगर नहीं है तो हमें चेक करते रहना है और चेंज करते रहना है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है, सारे दिन भर में कमल आसनधारी बनकर कर्म करते रहें और कर्म करते समय श्रेष्ठ समान में रहें कि मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया से कर्म करने के लिए इस साकारी दुनिया में अवतरित हुई हूं, इस श्रेष्ठ समान में रहते हैं तो हम श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे और श्रेष्ठ कर्मों का खजाना हमारा बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब से हम बाबा के पास आते हैं लोग हमारे हर कर्म को देखते हैं। ज्ञान में आने के पहले पड़ोसी भी नहीं हमें देखता है, लेकिन जैसे बाबा के पास कदम रखते हैं हजारों आंखें हमें देखती है कि ये कैसे कर्म करते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हीरो एक्टर बनते हैं, एक्टर से हीरो एक्टर बनते हैं। बाबा हमारा करोड़ों में सिलेक्शन करके नई दुनिया के स्थापना के कार्य के लिए हमें सिलेक्ट करते हैं। हम बहुत महान भाग्यशाली आत्माएं हैं। आठवां खजाना है दिव्य गुणों का खजाना। हमारा जो सलोना सजन है, हम आत्माओं रूपी सजनियों को दिव्य गुणों की ज्वेलरी के द्वारा श्रृंगार हमारा करते हैं। कि मेरी आत्मा रूपी सजनी हमेशा सजी सजाई हो, बहुत सुंदर लगती रहे। हर रोज वो साजन दिव्य गुणों के श्रृंगार से हमें सजाता रहता है। हम 1976 में सेवाधारी के रूप में मेडिटेशन हॉल में बाबा से मिल रहे थे। बाबा ने हम सेवाधारी ग्रुप से कहा था कि मधुबन में आप सेवा करते हो लेकिन एक साथ ट्रिपल सेवा करना सीखो। अब ट्रिपल सेवा कैसे करेंगे भाई? एक तो कर्मणा सेवा, दूसरी मनसा के द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा, अब तीसरी सेवा कौन सी करेंगे? यहां तो सारे ज्ञानी हैं, ज्ञान तो किसी को दे नहीं सकते। तो बाबा ने कहा था अपने दिव्य गुणों से सुशोभित चेहरे के द्वारा दिव्य गुणों का दान करना, ये है तीसरे प्रकार की सेवा। ऐसे हम ज्ञानियों की सेवा कर सकते हैं। तो चलन और चेहरे से हमें बहुत सेवा करनी होगी, ये भी बाबा ने इशारा दिया है। इसलिए चेहरा, हमारा चेहरा हरा भरा हो, दिव्य गुणों की हरियाली खुशहाली हमारे चेहरे पर हो, हमें मेरे शरीर रूपी घर के सामने मेरे दर पर कोई आता है तो मेरे दर से कोई भी खाली हाथ न जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे चेहरे से शांति के भाव, शक्ति के भाव, पवित्रता के भाव, खुशी के भाव हर किसी को मिलते रहें, कोई भी खाली हाथ न जाए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम आत्माओं पर है। इसलिए जितना दिव्य गुणों का दान हम देते जाते हैं, दिव्य गुणों का खजाना ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है और सारे दिव्य गुणों रूपी फल हमारे जीवन रूपी पेड़ पर लगे हुए लदे हुए अनुभव होते हैं और दिव्यता की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। नौवा खजाना है शक्तियों का खजाना। हमें शक्तियों का खजाना बढ़ाते रहना है। हम देखते हैं हर रोज अमृत वेले या नमाज शाम के समय योगाभ्यास हम करते हैं, थोड़ी शक्तियां बाबा से प्राप्त करते हैं, जमा करते हैं, लेकिन सारे दिन भर में हजारों संकल्प अपने लिए सेवा के लिए मन में क्रिएट करते हैं, तो जितनी शक्तियां बाबा से लेते हैं उतनी शक्तियां खर्च भी कर लेते हैं, जमा का खाता नहीं होता है। अभी शक्तियों का दान करने के लिए जमा का खाता बढ़ता रहे, ये लेकिन जमाना कैसा है, ये जमाना कैसा है भाई? जमाना, ये जमाना शक्तियों के खजाने को जमा होने ही नहीं देता है। हमारी बुद्धि को इधर उधर खींचता रहता है, आकर्षित करता रहता है, बाबा के तरफ जाने नहीं देता है। लेकिन बाबा का वर्तमान समय इशारा है कि शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते चलो, साधारण योगाभ्यास का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि शक्तिशाली योगाभ्यास से अथाह शक्तियां हम बाबा से प्राप्त करते हैं और थोड़ी शक्तियां प्रयोग में लाते हैं, यूज करते हैं और जमा का खाता हमारा बढ़ता जाता है। इसलिए आप महान आत्माओं को बाबा ने ये गोल्डन चांस दिया है, मधुबन जैसी पवित्र धरणी पर, ऐसी श्रेष्ठ तमो तपोभूमि पर आकर तपस्या करने का गोल्डन चांस बाबा ने आप सभी महान आत्माओं को दिया है, क्योंकि सारे विश्व के ग्लोब पर ये सबसे पावरफुल स्थान है। इस स्थान पर दुनिया के जितने भी क्रीम हमारी दादियां दादाएं इन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की है, ऐसी धरणी पर आपको तपस्या करने का गोल्डन चांस मिल गया है। इसलिए हमें बहुत सुंदर योगाभ्यास के गहन अनुभव करना है और शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते जाना है। तो अमृत वेले हमें शक्तियों के खजाने को जमा करना है और सारे दिन भर में अष्ट शक्तियों के रूप में हमें उन शक्तियों को यूज करते जाना है। जितना इन अष्ट शक्तियों को यूज करते जाते हैं उतना ये खजाना वृद्धि को पाता जाता है। हमें यूज करना है ना। किसी ने आपको आम की बहुत अच्छी सुंदर फल की पेटी दिया और आपने वो आम फ्रीज में रख दिए और यूज ही नहीं किया उसको, और 5-7 दिन के बाद देखते हैं ये आम तो खराब हो गए, उसको फेंक देते हैं। तो देने वाले का भाग्य भी नहीं बना, आपने भी उसको यूज नहीं किया, आपको शक्ति भी नहीं उससे मिली। तो जैसे स्थूल खजानों पर हमें ध्यान देना पड़ता है, ऐसे अलौकिक खजानों पर भी हमें ध्यान देना है, उनको यूज करते जाना है, तो स्वतः ही वो बढ़ते जाते हैं। और उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है शक्तियों के खजाने को बढ़ाने के लिए। नमा शाम के समय या अमृत वेले योगाभ्यास के बाद हमें परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा के पास बैठना है, शक्तियों का शावर लेना है और सारे विश्व की आत्माओं को शक्तियों का किरणें दान करना है। तो जितना हम शक्तियों का दान करते हैं उससे शक्तियों का खजाना हमारा बढ़ता है। कैसे बढ़ता है भाई? शक्तियों का दान देने से शक्तियों का खजाना कैसे बढ़ता है, कभी आपने इस पर सोचा होगा? उसके पीछे बहुत गहरा राज है। जितना हम शक्तियों का दान देते हैं आत्माओं के दिल की दुआएं हमें मिलती हैं, और जितनी दिल की दुआएं हमारे पास बढ़ती हैं उतना शक्तियों के सागर परमात्मा से शक्तियां खींचने का, शक्तियां प्राप्त करने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप शक्तियों का खजाना हमारा और बढ़ता जाता है। शक्तियां जमा करने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है, इसलिए शक्तियों का दान हमें करते रहना है। और उसके बाद दूसरा खजाना है दुआओं का खजाना। कौन सा नंबर है? 10वां नंबर है दुआओं का खजाना। संगम युग है दुआओं को जमा करने के सीजन। जैसे आम की सीजन अंगूर की सीजन आती है तो संगम युग है दुआओं को जमा करने की सीजन। जितना चाहे दुआओं का खजाना जमा कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और जब हम शरीर छोड़ते हैं हमारे साथ कुछ भी नहीं चलता है, केवल दुआओं का खजाना आत्मा के साथ चलता है, उसको पुण्य का खाता हम कहते हैं। इसलिए संगम युग में सेवा के द्वारा हमें दुआओं का खाता खूब बढ़ाना है। जानकी दादी जी इतनी उम्र होते हुए भी सेवा में भागती रहती थी और कहती थी कि मुझे दुआएं चलाती हैं, मेरा अपना पुरुषार्थ नहीं चलाता है लेकिन दुआओं का खजाना मुझे चलाता है। इसलिए सेवा के द्वारा हमें दुआओं का खजाना खूब जमा करना है। सेवा के द्वारा तन से मन से धन से मनसा वाचा कर्मणा से संबंध संपर्क से जितने भी सेवा करने के माध्यम हैं, चांसेस हैं, सबको हमें प्रयोग में लाना है और दुआओं का खजाना बढ़ाते जाना है। कई सोचते हैं सेवा केंद्र पर यज्ञ में या महायज्ञ में छोटी मोटी सेवा मिलती है तो सोचते हैं दीदी तो मुझे बहुत छोटी सेवा देती है। भगवान के यज्ञ में कोई छोटी और कोई मोटी सेवा नहीं होती है। झाड़ू लगाने की भी सेवा बहुत बड़ी सेवा है। यह प्रभु प्रसाद है जो दिल से वो सेवा करते हैं, प्यार से सेवा करते हैं, तो सेवा के सब्जेक्ट में 100 मार्क्स उनको मिलते हैं। इसलिए तन मेरा अभी अच्छा है, इस तन के द्वारा हमने बहुत पाप किए हैं द्वापर युग से, तो इस तन के द्वारा हमने बहुत पुण्य कर्म करते रहना है तो पाप कर्मों का खाता धीरे धीरे घटता जाएगा। इसलिए हड्डी हड्डी हमें सेवा करना है और मनसा से भी हमें खूब सेवा करना है। भगवान के सेवा साथी और सहयोगी बच्चे बनने का गोल्डन चांस हमें मिला हुआ है। बहुत एक गुह राज आपको बताते हैं, जो शिव बाबा के सेवा साथी सहयोगी बच्चे बनते हैं वो सारे कल्प में इस विश्व की नंबर वन श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा बाबा की उनके आत्मा के समीप भाग्य अपना पाड़ बजाने का भाग्य उनको प्राप्त होता है और इस महान आत्मा के संपर्क में समीन पाड़ बजाने से हमारा भी महत्व बढ़ता जाता है। इसलिए भगवान के सेवा साथी बनते हैं और ब्रह्मा बाबा के साथ में रहने का भाग्य मिलता है। इसलिए सेवा और शिवा ये दो बातें ही मुझे नजर आती है, तीसरी बात के लिए मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय है ही नहीं, या तो सेवा या तो शिव बाबा की याद, इसी में कमाई करते रहना है और दुआओं का खजाना हमें बढ़ाते जाना है। उसके लिए सदा रहम दिल और दातापन की भावना हमारे मन में सदा पनपती रहे, क्योंकि बाबा कहते हैं ज्ञान और योग से आप योग्य तो बनते हैं लेकिन भाई राज किस पर करोगे। सतयुग त्रेता युग में तो सेवा जितनी हम करेंगे उतनी प्रजा ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी और उतना बड़ा सिंहासन हमें मिलेगा और दुआएं भी जमा करते जाएंगे। तो संगम युग में बाबा ने हमें ये बहुत बड़ा चांस दिया है। इसलिए हमारा यही स्लोगन हो कि संगम युग में आराम हराम है। सच्चा आराम किस में है भाई? आ राम, जब हमारी बुद्धि में निराकार राम आ जाता है, बाबा बैठ जाता है, बाबा की याद आती है, उसमें ही हमारे दिल को सच्चा आराम मिल जाता है। इसलिए हमें वो स्थूल आराम पसंद नहीं बनना है लेकिन सेवा में भागते रहना है और भाग्य के सितारे को चमकाते रहना है, क्योंकि जितना ये दुआओं का खजाना बढ़ता जाता है उससे क्या लाभ होता है भाई? दुआओं का खजाना बढ़ने से क्या लाभ होता है? अब बहुत हल्के फुल्के अनुभव करते हैं और एक अजीब सी खुशी, अजीब सा नशा अनुभव होता है, जिससे योगाभ्यास में बहुत गहन अनुभव हमें होते हैं और उड़ती कला में सदा उड़ते रहते हैं। ये दुआओं की सबसे बड़ी प्राप्ति हमें मिलती है और फरिश्ता स्थिति की सुंदर अनुभूति हमारी बढ़ती जाती है। इसलिए एक शब्द याद रखना, खजाना पाना है तो खो जाना सीखना है। खुद में और खुदा में खो जाना तो खजाना हमें मिलता जाएगा, और जितना ये खजाने हम बांटते जाएंगे उतने हम खजानों से माला माल होते जाएंगे और अनेकों को माला माल करते जाएंगे। ओम